Om Shanti. 11th November 1981. Swayam Bibindu Roop Bano. Yad Bibindu Ko Karo. Aur Drama Ke Har Drishya Ko Jane. Karne Ke Baad Bindu Ki Matra Laga Do. Ek Bindu Ki Matra Mein Aap, Baap Aur Rachna. Sab Aa Jata Hai. To Janna Hi Kya Hai Bindu. Karna Bhi Kya Hai Bindu Ko Yad. Isi Bindu Ki Matra के महत्व को जान सदा सहजयोगी बन सकते हो। कितना भी बड़ा विस्तार है लेकिन समाया हुआ बिंदु में है, बीच बिंदु है, उसी में सारा वृक्ष समाया हुआ है। आत्मा बिंदु, उसी में 84 जन्मों के संस्कार समाये हुए हैं। 5000 वर्ष के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो चक्र बीत चुका उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए, बिंदी बन अब कर जाना है, बिंदु के साथ बिंदु बन कर जाना है। घर भी सर्व बिंदुओं का घर है। संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई है। समाप्ति की मात्रा ही बिंदी है। सर्वगुण, सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु। संबंध और संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है बिंदु। सर्व कार्यकर्ता कौन है? बिंदु ही है ना। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुंचे तो भी बिंदु पहुंचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोकों तक पहुंचते हो तो भी कौन पहुंचता है? बिंदु। साइंस की शक्ति या साइलेंस की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति या निर्माण में निर्वाण में जाने की शक्ति है तो बिंदु ना। बीज से इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता, लेकिन विस्तार के बाद समाता किस में है? बीज अर्थात बिंदु में। तो अनादि अविनाशी है ही बिंदु। आप भी 3 कालों की नॉलेज, 3 लोकों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन है? बिंदु। आदि से अंत तक वैरायटी पार्ट बजाया, लेकिन पार्टधारी कौन है? किसने पार्ट बजाया? बिंदु ने। तो महत्व सारा बिंदु का है, और बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाती है, अर्थात स्वयं श्रेष्ठ हो जाती है। 11 नवंबर 1981 क्या सुना बिंदु? इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान सदा सहजयोगी बन सकते हो। कितना भी बड़ा विस्तार हो लेकिन समाया हुआ बिंदु में है। बिंदु में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है। बिंदु में ही 84 जन्म समाये हुए। बिंदु में ही 5000 साल के ड्रामा संगम के अंत में समाप्त कर रहे हो। अब ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, अर्थात जो बीत चुका उसे फुल स्टॉप। बिंदु बन अब घर जाना है। बिंदु के साथ बिंदु बन कर घर जाना है। घर भी कैसा है? बिंदुओं का घर। संकल्प, कर्म, संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लग गई। समाप्ति की मात्रा ही है बिंदु। सर्वगुण, सर्वज्ञान, सर्व खजानों के सागर, सागर भी है बिंदु। संबंध संपर्क में भी आओ लेकिन सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है? बिंदु। सब कार्यकर्ता कौन है? बिंदु। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुंचे हो तो भी कौन पहुंचा है? बिंदु। आप साइलेंस की शक्ति से 3 लोकों तक पहुंचते, परंतु पहुंचता कौन है? बिंदु। साइलेंस की शक्ति, साइंस की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति, निर्वाण जाने की शक्ति है तो बिंदु ना। बीज में इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता है, लेकिन विस्तार के बाद समाता किस में है? बिंदु में। बीज अर्थात बिंदु में। तो अनादि अविनाशी बिंदु है। आप भी 3 लोकों का नॉलेज, 3 लोकों की नॉलेज, तीनों कालों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन है? बिंदु। अनादि से आदि तक वैरायटी पार्ट बजाने वाला पार्टधारी कौन है? बिंदु। तो महत्व सारा बिंदु का है, तो बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना और सब कुछ पाया। बिंदु रूप में स्थित हो, जो भी संकल्प करोगे, जो भी बोल बोलोगे, जो भी भावना रखोगे और जो भी कर्म करोगे, तो जैसे बिंदु महान है उसी तरह हर संकल्प बोल भावना और कर्म महान और श्रेष्ठ हो जाएगा। तो महत्व सारा किसका है?
बिंदु का है।
बिंदु का, बिंदु अर्थात बीच, बिंदु अर्थात आत्मा, बिंदु अर्थात परमात्मा, बिंदु अर्थात पॉइंट, बिंदु अर्थात डॉट, बिंदु अर्थात फुल स्टॉप, बिंदु अर्थात जीरो, बिंदु अर्थात, बिंदु को कहा जाता है ज्योमेट्री में, बिंदु जो है जीरो डायमेंशन है, बिंदु का जो है जीरो डायमेंशन, नो लेंथ नो ब्रेथ, ना उसकी लंबाई है, ना उसकी ऊंचाई है, ना उसकी मोटाई है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बिंदु जो है वो क्या है? डॉट है। सारा यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो है उसका आधार बिंदु जो है वो बिंदु है, आधार स्तंभ एक बिंदु, इसमें कुछ भी नहीं है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है, इसका कोई क्षेत्रफल नहीं है, एरिया नहीं है, आयतन नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई कुछ भी नहीं है, परंतु सारी जो ज्योमेट्री है यूक्लिडियन ज्योमेट्री उसका आधार क्या है? बिंदु है। और बाबा कह रहे बिंदु में ही सब समाया हुआ है। पहले लोग समझते थे यूक्लिडियन ज्योमेट्री में कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाली जो भी लाइन होगी वो स्ट्रेट होगी हमेशा, इसे कहा जाता है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। दो बिंदु जो है, दो पॉइंट, उसमें जो भी लाइंस जोड़ी जाएगी बनाई जाएगी वो स्ट्रेट होगी। परंतु फिर लोगों ने थोड़ी अपनी बुद्धि बहुत चलाई, पहले तो एक ही ज्योमेट्री थी, ज्योमति हिंदी में, पहले तो एक ही था कि टू पॉइंट्स और उसको कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो हमेशा स्ट्रेट होगी। परंतु यदि ये दो पॉइंट को खींचा जाए, इतना खींचा जाए कि बाद में पता चला धरती तो गोल है, तो फिर ये लाइन स्ट्रेट कैसे हो सकती है? क्योंकि इतना अगर दो बिंदुओं को खींचा जाए तो धीरे धीरे ये जो स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, इसके लिए बाद में नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री का निर्माण हुआ। ये यदि धरती है और ये दो यहां बहुत सारी आत्माएं हैं, तो दो आत्माएं के बीच में जो भी कांटेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन है, परंतु वो दो आत्माएं अगर दूर जाए तो उनके बीच में जो संबंध है वो फिर स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो भी बेंड होगा। ये दूर जाना फिर भावनात्मक तल, मानसिक तल, किसी भी तल पर हो सकता है, परंतु जो परमात्मा यहां है, यहां पर कोई भी लाइन यहां से जोड़ो वो हमेशा स्ट्रेट रहेगी। यहां पर केवल यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, चाहे आत्मा कितनी भी दूर चली जाए परंतु परमात्मा के साथ जो संबंध है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन रहेगी। दो आत्माएं किसी भी रीति से एक दूसरे से जब दूर जाती है, शरीर से भले साथ में है परंतु मानसिक तल पर, भावनात्मक तल पर, बौद्धिक तल पर, वैचारिक तल पर, तो उनके बीच का जो संबंध है वो भी स्ट्रेट नहीं रहता, वहां पर वो भी बेंड होने लगता है। परंतु परमात्मा एक ही ऐसा है कि उसके साथ जो आत्मा का संबंध है वो हमेशा ही डायरेक्ट है, वो कभी भी नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री को फॉलो नहीं करता है। तो यहां बाबा बात कर रहे हैं सब कुछ आत्मा में ही समाया हुआ है। क्या क्या समाया हुआ है? सारे 84 जन्मों का पाठ, सारे 5000 साल का पाठ, आत्मा ने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी, वो सब कुछ उसमें समाया हुआ है, कुछ भी भूला हुआ नहीं है। यदि कोई याद करना चाहे तो सब कुछ याद किया जा सकता है, क्योंकि कुछ भी मिटा हुआ नहीं है, केवल विस्मृत हुआ है। जैसे एक अंधेरा कमरा है और उस अंधेरे कमरे में हम एक टॉर्च लेकर जाए और उस टॉर्च को, उसका टॉर्च का प्रकाश केवल सामने जाता है, ऐसी वो टॉर्च है, पॉइंटेड। कुछ कुछ टॉर्च होती है ना, सिर्फ आगे प्रकाश जाता है। अगर हम किसी एक कोने पर उसको केंद्रित करें तो उसमें क्या है वो दिखाई देगा और बाकी सब जगह अंधेरा। वहां से निकालकर किसी और जगह केंद्रित करें तो वहां दिखाई देगा, बाकी सब जगह अंधेरा। वैसे ही आत्मा ने पूरे जन्म लिए है, एक से लेके 84, यहां से उसने चालू किया अगर जन्म, फर्स्ट 84th, ये जितने जन्म है आत्मा के, 1 से लेके 84 तक, इन सारे जन्मों में उसने जो कुछ भी किया है वो सब उसे याद है। यदि हम चाहे कि 1820 में हम सुबह क्या कर रहे थे, आपको तारीख दी जाए, आज की तारीख कौन सी है, 6 तारीख अक्टूबर मास 1820, हम क्या कर रहे थे, यदि ये तारीख दी जाए यहाँ की, तो और पूरा फोकस अगर इसमें कर दिया जाए तो उस दिन की सारी दिनचर्या याद आ सकती है। हमने क्या कपड़े पहने थे, सुबह 6 बजे, इतने बजे हम 5:30 बजे क्या कर रहे थे, चाय जो पी थी उसमें शक्कर ठीक थी या कम थी, क्या था, सब कुछ याद आ जाएगा। परंतु आत्मा विस्मृत हो जाती, फोकस कहां पर है, आत्मा ने जो कुछ भी किया है वो सब उसे याद है। यदि फोकस कर दिया जाए आधे कल्प में, ये इधर एक इधर, यहां से उसने जो कुछ किया है वो भी उसके अंदर रिकॉर्डेड है, ये जो उसने किया है वो सब भी उसमें रिकॉर्डेड है। यहां उसने पाप ही किए हैं सारे, यहां उसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश पाप किए हैं। यहां पर वो संपूर्ण आत्माभिमानी स्थिति में थी, यहां पर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ पवित्र था, शुभ था, श्रेष्ठ था, महान था, क्योंकि ये आत्माभिमानी स्थिति थी। यदि आत्मा यहां अभी है, और ये तो प्रकृति ने बहुत अच्छा है भुला दिया, जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है पिछले जन्म का सब भूल जाता है, अगर उसे याद आ जाए तो मुश्किल हो जाए जीना, क्योंकि इसी जन्म का हमको बचपन का सारा अब तक याद आ जाए, बहुत सारी चीजें भूल गए तो एक दिन भी जीना मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए उसको सब भूल जाता है। परंतु अभी बाबा कह रहे स्मृति स्वरूप, इसको याद नहीं करना है, इसको याद करना है, इसको याद करना है तो उसका कोई दूसरा स्वरूप याद करना है, ये जो पहले का रूप है। यदि सारा फोकस आत्मा इसमें कर दे, बार बार उसको ये याद आ जाए कि मैं कौन था, मैं कौन थी, तो वो सारे संस्कार प्रकट होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ आत्मा में समाया हुआ है। 84 जन्म आत्मा ने लिए है, 5000 साल का चक्र उसमें समाया हुआ है, सारा रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। करता कौन, आत्मा, बोलता कौन, आत्मा, इसी में सारे रिकॉर्ड है। जो भी हमने कर्म किए, जो भी हमने सोचा है, जन्म जन्म की सोच इसमें समाई है, जन्म जन्म के संस्कार इसमें समाये हैं, जन्म जन्म के बोल संकल्प कर्म सब कुछ, आदतें सब कुछ है, और वो हमारे ऊपर है, हम किसको इमर्ज रखे और किसको मर्ज कर दे। तो यहां बाबा ने दो चीजें कही है, एक तो बिंदुओं का देश वो परमधाम, और एक बिंदुओं का देश है ये साकार सृष्टि, ये भी बिंदुओं का देश है और वो भी बिंदुओं का ही देश है। सब कुछ आत्मा में ही समाया है, सब कुछ बिंदु में ही समाया है। यदि आत्मा वो जो ऊपर का बिंदुओं का देश है उसकी स्मृति में ज्यादा समय रहे, तो बहुत सारे वहां के जो संस्कार है, आत्माभिमानी स्थिति के जो संस्कार है, वो सारे जागृत हो सकते हैं। और ये जो देह में रहने के जो संस्कार है वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं और तभी परिवर्तन होगा, क्योंकि मूल हमारा जो स्वभाव है वो आत्मा है। तो हम यहां पर दो बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आत्मा जब परम धाम में है तब की, और दूसरा आत्मा जब यहां है तब की। कुछ दिन पहले क्लास में भी बताया था, जो हमने सुबह सुबह एक दिन अमृत वेला सहज एक अनुभव हुआ था कि जिसमें परम धाम में आत्मा के अनुभव, परम धाम में आत्मा के अनुभव, द सेवन एक्सपीरियंसेस ऑफ सोल इन सुप्रीम एबोड। कई दिनों पहले या महीनों पहले हमने एक चर्चा की थी परम धाम में आत्मा की 7 ड्रिल, वो अलग। ये आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है परम धाम में आत्मा के 7 प्रकार के अनुभव जो हमको करने हैं। यदि ये परम धाम है, और एक चीज, परम धाम कैसा है इसकी भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए। हम दिखाते हैं कि ये धरती है, नीचे ये सूक्ष्म वतन है, और ये परम धाम है, ठीक है, ये आत्मा, और हम अपने चित्र में ऐसा दिखाते हैं, ठीक है ना। नीचे धरती, यहाँ पर सूक्ष्म वतन, यहाँ परम धाम। कोई यदि हमसे कहे परम धाम के ऊपर क्या है, तो हमारा उत्तर क्या है? वी आर एट लॉस, हमको पता ही नहीं उत्तर क्या है। कोई यदि ये पूछे कोर्स कराते समय कि परम धाम के ऊपर क्या है, तुमने कहा ये यहाँ है धरती के ऊपर सूक्ष्म वतन, और इसके ऊपर ये ऊपर नीचे क्या है? ये तो स्पेस है, स्पेस में ऊपर नीचे कहां से आ गया? स्पेस में ऊपर नीचे होता है, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे? स्पेस में कुछ भी नहीं होता है, फिर ये हम क्यों बता रहे हैं? पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे स्कूल में टीचर ने पूछा छोटी सी 5वीं 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को, धरती गिरती क्यों नहीं? Why does not the earth fall? टीचर ने पूछा स्टूडेंट्स को कि धरती गिरती क्यों नहीं? एक बच्ची ने उत्तर दिया, कहां गिरेगी? Where it will fall? गिरने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि स्पेस है, ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। वास्तव में यह चित्र ऐसा नहीं है, यह तो एक कट सेक्शन है। यदि ये शिव बाबा यदि हम समझे, ठीक है, और ये सूक्ष्म वतन पूरा है, और फिर यहां एक जगह धरती, और फिर इसका कट सेक्शन लेक, तो फिर कहा जा सकता है ये एक कट सेक्शन है खाली, कि ये धरती, ये सूक्ष्म वतन पूरा ही गोल, और शिव बाबा बिंदु। तो ये यदि परम धाम है तो इसके ऊपर क्या का सवाल ही नहीं है, नीचे ऊपर ये तो है ही नहीं। वास्तव में ये ऐसा ही है कि ये यदि वो है, सारा संपूर्ण जो है उसका बिंदु शिव बाबा है, और उसके ऊपर नीचे आत्मा है। परम धाम में खाली नीचे नहीं है जो हम दिखा रहे हैं ऐसा, उसके ऊपर भी है, उसके आगे भी है, उसके पीछे भी है, सब जगह है, आगे पीछे सब जगह। तो वो यहां है, वो यदि यहां है और वो सब जगह आत्माएं हैं, फिर यहां सूक्ष्म वतन है, परंतु केवल यहां नहीं है, वो पूरा ही सूक्ष्म वतन है, और नीचे धरती है, नीचे एक जगह धरती है, यहां ऐसी हजारों धरतियां या कुछ और हो सकता है। अगर वहां का कट सेक्शन लो तो कुछ और बनेगा, ये जो है ये केवल एक कट सेक्शन है यहां का लिया हुआ, ठीक है ना। तो हमें परम धाम को देखना है, विजुअलाइज करना है, तो यहां हमें क्या अनुभव करना है? सबसे पहला साइलेंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस जो करना है, किस चीज का करना है? स्पीचलेसनेस अर्थात साइलेंस, अर्थात ध्वनि रहित, अर्थात वर्डलेसनेस, कोई स्वर नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई स्पीच नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई आलाप नहीं, कोई आवाज नहीं, बे आवाज चुप्पी, साइलेंस। एक अनुभव है साइलेंस का इस धरती का, जो हम चुप हो जाए या सभी मौन धारण कर ले या प्रकृति में हम चले जाए, संपूर्ण एकांत, किसी का आवाज नहीं है, एब्सोल्यूट साइलेंस, वो एक साइलेंस का अनुभव। परंतु वो साइलेंस फिर भी इस दुनिया का साइलेंस है। एक और भी साइलेंस है जो उस दुनिया का साइलेंस है। तो फर्स्ट अनुभव करना है कि मैं आत्मा इस तन से गई, सूक्ष्म वतन में गई, फिर सूक्ष्म वतन से सूक्ष्म देह भी छोड़ दी और परम धाम में गई। तो यहां याद करना है मैं साइलेंस वर्ल्ड में हूं। और मुझे सबसे पहला अनुभव जो यहां करना है, आत्मा साइलेंस का अनुभव कर रही है, कंप्लीट साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई भी आवाज नहीं है, बे आवाज। और इस अनुभव के साथ वो इस दुनिया का साइलेंस नहीं है, वो उस दुनिया का साइलेंस है, बिंदुओं के देश का साइलेंस, पहला। दूसरा अनुभव पीस। कौन सा पीस? परम धाम का पीस। एक पीस है जो आत्मा यहां अनुभव करती है, इस दुनिया में शांति का अनुभव करती है, जब मन शांत हो जाए, मौन रहे या योग का अभ्यास करे या चुप रहे, जो भी। परंतु एक पीस है उस शांति धाम का, उस लैंड ऑफ पीस का, पीस का अनुभव करना, कि मैं आत्मा उस पीस का अनुभव कर रही हूं। और वो पीस वहां है, वो जो वातावरण है उस शांति धाम में, वो पीस है जिसका मैं अनुभव कर रही हूं। पहले वहां जो साइलेंस है उसका मैं अनुभव कर रही हूं, दूसरा वहां जो पीस है उसका मैं अनुभव कर रही हूं, तीसरा मुक्ति, फ्रीडम, लिबरेशन, लिबर्टी। मैं आत्मा एक अनुभव करती हूं कि मैं यहां मुक्त हूं, इस देह में रहते हुए मैं आत्मा मुक्त हूं सब बंधनों से या संसार से, एकदम मुक्ति का अनुभव कर रही हूं चिंताओं से, तनाव से। एक मुक्ति का अनुभव है, अलग प्रकार की मुक्ति। यहां आत्मा जब मुक्ति धाम में है, मोक्ष धाम में है, कैवल्य धाम में है, वह मोक्ष धाम, वह कैवल्य धाम, वह लैंड ऑफ लिबरेशन में है, वहां पर लिबरेशन का अनुभव। मैं आत्मा किन किन बातों से मुक्त हूं, एक बार इसकी चर्चा की थी कभी किसी क्लास में, देह के बंधन, उसमें कौन कौन से, देह के संबंध से मुक्त हूं, देह की इच्छाएं, देह का देश, देह की भाषा, देह का स्थान, देह के संबंध, देह के भोग, देह की तृष्णाएं, देह के संस्कार, देह के अनुभव, देह से संबंधित जो भी है वो सबसे मैं आत्मा इधर मुक्त हूं। देह, देह के संबंध, देह के धर्म, देह की इच्छाएं, तृष्णाएं, देह के भोग, देह और देह की दुनिया, ये सारे शब्द वहां लाने हैं कि मैं आत्मा इस समय यहां हूं और वहां मैं यहां की जो भी बातें हैं सब कुछ सबसे मुक्त हूं। मेरा यहां कोई भी नहीं है, न मां, न बहन, न संबंध, कोई नहीं। ये सभी जो संबंध है देह के, इन सब से मैं ऊपर हूं। जीसस क्राइस्ट से उसकी मां मिलने आती है, लोग उसको कहते हैं देखो तुम्हारी मां आई है, वो कहता है कौन मां, हु इज दिस लेडी, आई हैव ओनली वन फादर नो मदर, मेरा एक पिता है बस, मेरी कोई मां नहीं है। कौन सी मां, कौन सा पिता, कौन सा बाप, कौन सी बहन, कौन सा भाई, कौन सा बेटा और कौन सी बेटी। आत्मा इस जन्म में उसके है, ये इसके पहले जन्म में वो कुछ भी नहीं था और उसी में आत्मा भ्रमित है कि ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये दुखी है तो मैं दुखी, वो सुखी है तो मैं सुखी। आत्मा मुक्त है, मैं आत्मा यहां हूं, इस मुक्ति का अनुभव रोज करना है। यहां कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी संबंध नहीं है। वो भागवत में कहानी है ना, राजा होता है, उसको पुत्र चाहिए होता है, सबसे मिलता है, साधु संतों से, कोई कहते तुम्हारे भाग्य में पुत्र ही नहीं है, वो नारद आता है, नारद से बहुत प्रार्थना करता है कि नहीं तुम कुछ करो ही। वो कहता है कि पुत्र तो है ही नहीं, फिर भी तुम कह रहे हो तो ठीक है, एक पुत्र जन्म लेगा परंतु वो अल्प आयु का होगा। वो कहता है वो सब मुझे मत बताओ, मुझे चाहिए बस। पुत्र हो जाता है, बहुत खुशियां, बहुत खुशियां, भागवत में कथा आती है, बहुत खुशियां, सारे राज्य में सब कुछ बैंड बाजा सब कुछ होता है, और बेटा जब कुछ महीनों का ही होता है तो मर जाता है। तो वो इतना दुख, इतना दुख, राजा तो ये भूल ही जाता है कि उसने ये भी कहा था कि अल्प आयु का होगा, तब तो केवल पुत्र चाहिए था। और फिर इतना विलाप, इतना विलाप, रानियां सब रो रहे हैं। तो नारद वहां से जाते रहता है, उसको कहता है इधर आओ, तुमने कहा था कि पुत्र होगा, ये तो चला गया, ऐसा कैसे तुमने पुत्र दे दिया। बहुत उसको कुछ कुछ कहते हैं। तो नारद कहता है ठीक है, उसको वापस बुलाता हूं। तो आत्मा वापस आती है, तो आत्मा को पूछते हैं ये तुम्हारे पिताजी और ये तुम्हारी मां रो रही है। तो वो आत्मा फिर वो वार्तालाप है वहां पर, संवाद। वो कहता है, वो आत्मा कहती है कौन सा पिता, कौन सी मां, किस जन्म की मां, कौन से जन्म के पिता, मेरे इतनी माए हैं, इतने पिता हैं, ये उनमें से कौन से जन्म की मां है और कौन से जन्म का पिता है, पहले मुझे ये बताओ। मुक्ति का अनुभव, इतने सारी मां और इतने सारे बाप, 84 जन्मों के 84 मां 84 बाप, और उसके बाकी इतने सारे संबंध, निकट संबंध। आत्मा फंसी है इसमें, इसलिए एक अनुभव करना है परमधाम में, बिंदुओं के देश में, मैं आत्मा मुक्त हूं, वहां की मुक्ति का अनुभव, हर चीज से मुक्त हूं, कुछ भी नहीं है यहां, देह से संबंधित, देह की इच्छाएं, तृष्णाएं, भोग, धर्म, भाषा, देश, स्थान, राष्ट्र, ना तो भारत के हैं, ना कहीं और के। ये अनुभव करना है कि मैं इस मुक्ति की अवस्था का कुछ समय अनुभव, ताकि ये जो नीचे के बंधन है इनको तोड़ने में पावर आए, नहीं तो पावर कैसे आएगी, तोड़ेंगे कैसे, टूटेंगे नहीं बंधन। तीसरा मुक्ति, चौथा आत्मा को अनुभव करना है अपने सात स्वरूपों का। एक आत्मा का हम अनुभव करते हैं यहां पर, मैं आत्मा यहां हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, पवित्र स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। एक अनुभव करना जब जहां शरीर नहीं है उस अवस्था में, वहां पर परमधाम में, मैं आत्मा उस परमधाम में यह अनुभव कर रही हूं कि मैं संपूर्ण पवित्र हूं, कंप्लीट प्योरिटी, अनटच्ड बाय बॉडी, शरीर है ही नहीं, वो तो शरीर के अंदर जैसे ही आती है वहां फिर धीरे धीरे इम्प्यूरिटी चालू होती है। शरीर को यहां टच ही नहीं है, शरीर का मेरा अपने ही शरीर से टच नहीं है, तो यहां कैसी प्योरिटी, इम्प्यूरिटी आएगी। एब्सोल्यूट इमैकुलेट प्योरिटी, कंप्लीट प्योरिटी जो जिसको कहते हैं ना, वो अनुभव मैं यहां कर रही हूं, मैं आत्मा यहां हूं और एब्सोल्यूट प्योर, इतनी प्योरिटी है यहां पर। वो प्योरिटी का अनुभव, वो शक्ति का अनुभव, वो सुख का अनुभव, वो आनंद का अनुभव, सच्चित आनंद स्वरूप हूं मैं, आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। वेदांत में आत्मा को इस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, मैं आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, वहां उस का अनुभव परम धाम में। तो आत्मा अपने निज स्वरूप का अनुभव करे, ये चौथा। अगला, परम धाम में जब आत्मा है तो वो अनुभव करे सिक्स्थ एलिमेंट का, या हमें पांच तत्वों का अनुभव है। हमने धरती को देखा है, हवा का अनुभव किया है, जल को देखा है, अग्नि को देखा है, आकाश को देखा है, क्षितिजल पावन पावक गगन समीरा, पांच तत्व है, उन सबको हमने देखा है। पर क्या हमें किसी और तत्व का अनुभव है, द सिक्स्थ एलिमेंट, वह ब्रह्म तत्व, इसके बारे में सबने सुना है, परंतु वहां उस परम धाम में मैं आत्मा हूं और अब मैं इस छठवें तत्व का अनुभव कर रही हूं, इस छठवें तत्व में मैं हूं, वेदांत के चार महावाक्य है, अहम ब्रह्मस्मि। हम इसको इस तरह ले, अहम ब्रह्मस्मि नहीं, मैं उस ब्रह्म में हूं। वो तो कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूं, परंतु हम कहे कि मैं ब्रह्म में हूं, वो कहते हैं सर्व खलविदम ब्रह्म। हम भी कहेंगे परम धाम में जो भी है वो सब कुछ ब्रह्म है, परम धाम में सर्व खलविदम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म। वो कहते हैं आत्मा ही ब्रह्म है, हम कहेंगे ब्रह्म में आत्मा है। चौथा महावाक्य है वेदांत का, जिस पर कंप्लीट अद्वैत वेदांत निर्भर है, वो है तत्वमसी। तुम वो हो, तुम और वो अलग नहीं हो, thou art that, तुम ही वो हो। केवल माया जो है वो आवरण है, नाम और रूप। ग्लास में जो भी हवा है, बाहर भी हवा है, परंतु ये जो ग्लास है उसका जो कांच है वो अगर हटा दिया जाए तो ये हवा और वो हवा एक ही है। ये वेदांत के सिद्धांत है, दिस एंड दैट आर वन। यहां हम ये अनुभव करें कि वो मैं हूं, तत्वमसी, thou art that, मैं आत्मा यहां हूं। तो परम धाम में ये अनुभव करना, किसका? उस ब्रह्म का। कितना हमें उस ब्रह्म का अनुभव है, यहां कैसे हो सकता है? यहां तो ब्रह्म का अनुभव ही नहीं है। इसके लिए हमें, हम इसलिए लाल लाइट करते ताकि उस ब्रह्म का अनुभव, उस ब्रह्म की स्मृति। उधर और एक महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, वो ब्रह्म चेतन है, ऐसा कहते हैं बाबा ने कहा ब्रह्म चेतन नहीं है, ब्रह्म अचेतन है। ये चार पांच अंतर है अद्वैत वेदांत और ब्रह्मा कुमारी से। उनका कहना है ब्रह्म जो है वो चेतन है, प्रज्ञानम ब्रह्म। बाबा ने कहा प्रज्ञान ब्रह्म प्रज्ञा नहीं है, जड़ है, ब्रह्म तो तत्व है, आत्मा चेतन है। इसके लिए इस अचेतन तत्व का अनुभव करना, उस सुनहरा लाल प्रकाश, उस परम धाम में मैं आत्मा उस ब्रह्म का अनुभव कर रही हूं। चारों ओर ब्रह्म लोक है, नए नए शब्द लाना। चारों ओर क्या है? ब्रह्म लोक। चारों ओर क्या है? ब्रह्मांड। चारों ओर क्या है? ब्रह्म देश, ब्रह्म लैंड। वो एनर्जी है और वो तत्व है। एक प्रश्न पूछा जाता है, आत्मा किस तत्व से बनी है? बहनों को प्रश्न पूछते हैं कोर्स कराते समय, ऑफ व्हाट एलिमेंट सोल इज मेड ऑफ, आत्मा किस तत्व से बनी है, ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या उत्तर है? आत्मा किसी भी तत्व से बनी नहीं है, आत्मा तत्व से बनी ही नहीं है, तत्व से तो ये संसार बना है। ये पांच तत्व और जो छठा तत्व है, द सिक्स्थ एलिमेंट, वो वहां है, वो जड़ है, परंतु आत्मा किसी भी तत्व से बनी नहीं है। आत्मा इज प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर एनर्जी, वो कोई तत्व नहीं है। तत्व को स्टेज कहना भी आई डोंट नो, वो तत्व को स्टेज भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो उनका कहना है कि ये जो तत्व है, ये तत्व भी एनर्जी ही है, तत्व भी तत्व नहीं है। मैटर, एक्चुअली मैटर ये जो दिख रहा है, एवरीथिंग इन द स्टेट ऑफ मोशन, ये जो यहाँ पे किताब है दिखाई दे रही है कि इनर्शिया में एक जगह है, पर एक जगह नहीं है, अंदर 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 जाओ एटम्स वाइब्रेट हो रहे है, और एकदम अंदर जाओ तो मैटर कुछ है ही नहीं एक्चुअली, सब कुछ है वो प्योर कॉन्शियसनेस ही है। ऐसे साइंस के सिद्धांत है जो वेदांत से कहीं समीप आ रहे है। इसके लिए वेदांतियों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ रही है कि हमारा ज्ञान सत्य है, क्योंकि साइंस उसके बहुत करीब है, क्योंकि साइंस ने प्रूव कर दिया है कि नथिंग इज मैटर। पहले तो कहा था मैटर अलग एनर्जी अलग दो है, परंतु धीरे धीरे पता चला कि नहीं, इक्वल टू एमसी स्क्वायर आइंस्टाइन, और उसको अगर डिस्ट्रॉय कर, दिट इज एक्चुअली एनर्जी ओनली, और बहुत जबरदस्त एनर्जी। इसलिए इस परम धाम में क्या अनुभव करना है? उस तत्व का, कि मैं इस तत्व के बीच में प्योर एनर्जी हूं। छठवा, आत्मा अपने शिव बाबा यदि यहां है तो उसकी सारी किरणें मुझ में आ रही है, डिवाइन रेज, इसका अनुभव। परमात्मा उसमें संबंध में शब्द है, खाली किरणें आ रही है, किरणें आ रही है और मुझ में पूरे की पूरी जैसी की वैसी सारी की सारी पवित्रता समा रही है। ये छठवा। और सातवा, मैं और वो एक ही है, अलग है ही नहीं। अब माय फादर एंड आई आर वन, हम एक ही हो गए। ये सात अनुभव। मैं आत्मा साइलेंस में हूं, मैं आत्मा पीस में हूं, मैं आत्मा फ्रीडम में हूं। सारे बंधनों को मैंने तोड़ दिए है, कोई भी बंधन नहीं है। हैरी हुडिनी का नाम आपने सुना होगा, सुना है? हैरी हुडिनी अमेरिका में एस्केपोलॉजिस्ट था एक। उसको किसी भी तरह से बंधन में बांध दो, वो सेकंड में बाहर निकल जाता था। हैंडकफ, यहां पे हाथ बांध दो, हैंडकफ, ताले लगा उसमें चार, पैरों को बांध दो, इधर बांध दो, कुछ मिनटों में सब कुछ छोड़ा के बाहर निकल जाता था। इतने प्रयोग किए गए हैरी हुडिनी पर। अभी तो नहीं है वो, एस्केपोलॉजिस्ट स्टंटमैन ऑफ अमेरिका, जादूगर था, परंतु उसको पूरे कितने हजारों प्रयोग किए गए। उसके गले में कुछ बांध दो, उसको एक बार सारे हाथ को हैंडकफ बांध दिए, चाबी लगा दिया, पैरों को बांध दिया, एक पेटी में डाला, पेटी को बांध दिया और समुद्र में फेंक दिया, देखते देखते बाहर आ गया। ऐसा एक व्यक्ति हुआ है कभी इस इतिहास में, हैरी हुडिनी। कोई उसमें जादूगर नहीं, वो करता था, मतलब सबके सामने करता था, स्टंट दिखाता ये सारे। वो देखो आप उसके चित्र अगर देखो नेट पे, ऐसे ऐसे उसको बांधे हुए, कभी ऐसे पकड़े हुए, अलग अलग इतने सारे उसके स्टंट्स उसने किए, हैरी हुडिनी ने। और जैसे एक उसके हाथ बांधो, पैर बांधो, उसको एक बक्से में एक पेटी में डालो, पेटी को बांधो, उस पेटी को दूसरी पेटी में डालो, उसको बांधो, उसको ताला लगाओ, एक कमरे में फेंक दो, कमरे को ताला लगाओ, देखते देखते सब कुछ तोड़ के बाहर। परंतु एक बार ऐसा हुआ, ऐसा भी इतिहास है, कि उसको इसी तरह बांध दिया गया, ठीक है, और उस कमरे में डाल दिया और उसको कमरा भी बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया। वो उसमें से तो छूट गया पर कमरे से छूट नहीं पाया। और उसने कहा पहली बार ऐसा हुआ एक्चुअली कि वो ताला जो था ना, वो एक्चुअली वो सोचता ही रहा कैसे करो उसको, परंतु बाद में उसे पता चला ताला लगा ही नहीं था। उसको भी लोगों ने चकमा दिया। ये एक टॉपिक है श्याम भाई, इसको तैयार करके रखना आपके लिए, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग ऑफ इंटेलेक्ट, नेक्स्ट के लिए इंग्लिश टॉपिक। तो सारे बंधनों को फटाफट वो तोड़ देता था, परंतु उस जहां बंधन था ही नहीं वो समझा बंधन है। हम भी बंधनों को तो स्थूल बंधनों को तोड़ देते, और बहुत सारे बंधन जो है ही नहीं हमको लगता है और उसको ही तोड़ नहीं पाते। जैसे हैरी हुडिनो को फंसा दिया था एक बार वो पहली बार असफल हुआ था तब हैरी हुडिनी। तो सब बंधनों से मैं मुक्त हूं वहां की अवस्था। तो ये परमधाम की सात अवस्था है, उसकी किरणें मुझ पर सारी की सारी आ रही है। वो जो है वो मुझ में आ रहा है, वो प्रेम का सागर है, वो प्रेम मुझ में अवतरित हो रहा है, वो रहम है, वो रहम मुझ पे आ रहा है, सब कुछ मुझ में आ रहा है वो अनुभव। और लास्ट में मैं और वो, वी आर वन, ये परमधाम की सात अवस्था। यहां बाबा ने और दो तीन चीजें कही कि इस धरती में संबंध, संपर्क, कर्म, संकल्प, बोल, एक है बिंदु रूप में इन अवस्थाओं में आना, एक है देहभान के रूप में इन अवस्थाओं में आना। इसका सभी खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखो, उसमें भी सात चीजें। सबसे पहले देहभान के संकल्प और बिंदु रूप के संकल्पों में क्या अंतर है। एक है बिंदु रूप में मैं स्थित हूं तो क्या संकल्प चल रहे, एक देहभान में हूं तो क्या संकल्प चल रहे। दूसरा बोल, देहभान में हूं, आत्मा रूप में हूं, बिंदु रूप में हूं तो क्या बोल बोले जाते हैं, देहभान में हूं तो क्या बोल बोले जाते हैं। तीसरा देहभान, बिंदु रूप में हूं तो क्या कर्म होते हैं, देहभान में आत्मा अभिमान में हूं तो क्या, और देहभान में हूं तो क्या। तीन, चौथा जब आत्माभिमानी स्थिति में हूं तो कौन से संबंध संपर्क है, और देहभान में हूं तो संबंध संपर्क की क्या क्वालिटी है। ये चार। पांचवा जब बिंदु रूप में हूं तो कौन से भाव और भावना मन में उत्पन्न होती है, और जब देहभान में रहता हूं तो कौन सी भाव और भावना होते हैं। पांचवा, छठवा जब देहभान में हूं तो कौन से कौन सी स्मृतियां रहती है और बिंदु रूप में कौन सी स्मृतियां रहती है। जैसे आत्माभिमानी हो गया तो कौन सी स्मृतियां है, और जैसे देह में हूं तो कौन सी स्मृतियां आती है। शरीर याद आते ही शरीर, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पिता, ये मेरा, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे ये लगा है, मुझे वो लगा है। उस दिन टॉपिक लिया था ना निखिलेश भाई का है, इमोशनल ईटिंग, समझ में आया था ना, इमोशनल ईटिंग इनवेन ने लिया था ना। इमोशनल ईटिंग मतलब इमोशनल ईटिंग अर्थात जब भूख नहीं है, पेट तो भर गया है परंतु मन नहीं भरा है, इसके लिए खा रहा है व्यक्ति, उसको इमोशनल ईटिंग कहा जाता है। उसके लिए इमोशनल डाइट की आवश्यकता है, फिर वो एक दूसरा टॉपिक, इमोशनल डाइट वो टॉपिक है एक्चुअली, इमोशनल डाइट, इमोशनल ईटिंग से मुक्त होने के लिए इमोशनल डाइट होता है। तो वो फिर कल्पना 7, इमेजिनेशन। सोल कॉन्शियसनेस में क्या इमेजिन करता है व्यक्ति, और बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या इमेजिन करता है। सोल कॉन्शियसनेस में क्या फीलिंग्स इमोशंस है, बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या फीलिंग्स इमोशंस है। सोल कॉन्शियस में कौन सी मेमोरीज है, बॉडी कॉन्शियसनेस में कौन सी मेमोरीज है, इस पर हर एक ने खुद एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे एक व्यक्ति देहवान में है तो वो सेंशुअल इमेजिनेशन करता है, सेंशुअल फैंटसी। उस दिन वहां पर कहां पर एनाद्रा में बहुत घूमने लोग आते हैं ना, तो वो तीन चार कुमार कहे उनको, संसार के युवक कहेंगे, कुमार तो नहीं युद्ध वो भी घूमने आए थे। तो वहां पर सब लोग मतलब जोड़ियां घूम रही थी, दो लोग दो लोग दो लोग, तो वो तीन लोग थे बेचारे, तीन ही थे उनके साथ, कोई उनकी कोई गर्लफ्रेंड कोई भी नहीं था। तो एक जोर से चिल्लाता है, खुदा कोई मुझे भी दे दे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति फिर सेंशुअल फैंटेसीज करता है कि मैं भी घूम रहा हूं किसी के साथ, मुझे भी कोई मिल गया है कोई साथी। ये जो चीजें हैं यहां से यात्रा चालू होती है काम विकार की, सेंशुअल एंड सेक्सुअल फैंटेसीज, और धीरे धीरे सेंशुअल फैंटेसीज सेक्सुअल फैंटेसीज का एडिक्शन होता है, और एडिक्शन के बाद उसका असर शरीर पर होता है। यहां से काम की यात्रा चालू होती है कल्पना से, क्योंकि व्यक्ति ने जो देखा है ना, या सुना, या चित्र, दृश्य, वीडियो, क्लिप, उसमें फिर वो जो हीरो है वो अपने आप को रिप्लेस करता है वहां पर कि ये मैं कर रहा हूं, और फीड करता है माइंड में एक कॉमेंट्री, सेंशुअल कॉमेंट्री, इंटरनल कॉमेंट्री चालू हो जाती है। तो वहां से यात्रा आरंभ है काम की। तो ये सारी जो साथ इधर नीचे की धरती पर, जब आत्मा आत्माभिमानी है, संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क भावनाएं स्मृतियां कल्पनाएं, ये सातों चीजें सोल कॉन्शियसनेस में क्या है और बॉडी कॉन्शियसनेस में क्या है। जितना जितना सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास होगा उतना उतना हमें बाबा ने जो कहा ये सारा दिखाई देने लगेगा। कहां गया ये पूरे जो जन्म है 1 से लेके 84, जिसको हम कहते हैं पूर्व जन्म की स्मृतियां, आत्मा ने क्या क्या पार्ट बजाए हैं वो सारे दिखने लगते हैं आत्मा को, जो जो श्रेष्ठ पार्ट बजाए हैं पूर्व जन्म की सारी। यहां यदि टॉर्च को फोकस कर दिया जाए कंप्लीट, यहां पर जो हमने कहा यहां टॉर्च अगर फोकस हो गई तो यहां के सारे संस्कार प्रकट होने लगेंगे। फिर ये विकार एबनॉर्मल है, ये हमारे माइंड में फिट होगा। एंगर एबनॉर्मल है, परवर्शन है, लस्ट परवर्शन है, जो संसार कहता है नॉर्मल है, एक स्त्री पुरुष के ये संबंध वो हमारे मन में आएंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ये सब नहीं करते थे। फिर ये जो लोग खाते थे, ये जैसे घूमते थे, जैसे इनके संकल्प थे, जैसे इनकी भावनाएं थी, जैसे लक्ष्मी के नारायण के प्रति संकल्प थे और नारायण के लक्ष्मी के प्रति थे, वो सारा यहां प्रकट होने लगेगा, क्योंकि टॉर्च हमने यहां फोकस रखी है। कृष्णमूर्ति पर प्रयोग किए गए थे, एनी बसंत ने कृष्णमूर्ति को बचपन में पकड़ लिया क्योंकि एनिवेशन थियोसॉफिकल सोसाइटी उसको लाना था बुद्ध की आत्मा को. द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैन, एनिवेशन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था थियोसॉफिकल सोसाइटी से, 6 लोगों को चुना था और उनका कहना था, क्योंकि बुद्ध ने कहा था मैं फिर आऊंगा मैत्रेयी के रूप में, तो मैत्रेयी की आत्मा को प्रकट होने के लिए शरीर भी तो वैसा चाहिए, इतना शक्तिशाली ऐसी पावरफुल आत्मा. तो एनिवेशन ने इस पूर्व 19वीं सदी में शुरुआत में ये एक्सपेरिमेंट किए, 6 लोगों को चुना, उसने जय कृष्णमूर्ति को चुना था और उसके भाई नित्यानंद को चुना था और 4 लोग और थे, वो तो 4 और उनको 9 साल की उम्र से ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी, एकदम जबरदस्त ट्रेनिंग, 4 घंटे सोना है, योगियों की ट्रेनिंग, कि ये आत्मा तैयार हो जाए जिसमें बुद्ध की आत्मा अवतरित हो मैत्रेयी के रूप में, एंड वो जो आत्मा आएगी वो वर्ल्ड टीचर होगी, ऐसा उसका एक्सपेरिमेंट था. उसको विदेश लेके गई, कोर्ट केस चला मद्रास में, उसके पिता ने कोर्ट किया, ये मेरा बेटा है, पर शी वॉज वेरी पावरफुल लेडी, वो बहुत पावरफुल थी एनिवेशंट, वो उसको लेके गई और फिर उसके भाई की तो डेथ हो गई 23 साल की उम्र में, नित्यानंद डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. पर जो जय कृष्णमूर्ति था इसको तैयार किया गया था. और एक बहुत बड़ी 1925 में हॉलैंड 6,000 लोग वहां, और उनके सामने वो जैसे कि आत्मा बुद्ध की उसमें आएगी और वो वहां घोषणा करेगी कि मैं आज से कृष्णमूर्ति नहीं हूं, मैं आज से वर्ल्ड टीचर हूं, मैत्रेयी हूं. परंतु ये सब मतलब ये आर्टिफिशियल एक एक्सपेरिमेंट, पहली बार ऐसा किया गया क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी की गई, बचपन से इतना रिगरस ट्रेनिंग कृष्णमूर्ति को दी गई, क्योंकि सबसे ब्राइट वो बच्चा था जो एनिवेशन ने उसके उसके कितने सारे भारत भर लोगों को, विश्व भर में लोगों को भेज दिया था, ऐसी छोटे किसी बच्चे को पकड़ो कि जिसमें बुद्ध की आत्मा प्रवेश कर सके, तो वो जय कृष्णमूर्ति था. परंतु जय कृष्णमूर्ति ने एन वक्त पर इतनी सारी सभा के बीच में डिनाय कर दिया कि मैं जय कृष्णमूर्ति हूं, यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा व्यक्तित्व है, मैं और दूसरा कोई नहीं हूं. वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया एनिवेशन का. और मैं नहीं चाहता कि किसी और की आत्मा मुझ में आए और वो मेरे द्वारा कार्य करे, फिर मेरा अस्तित्व का क्या होगा. इसके लिए ब्रह्मा बाबा की एक महानता ये भी है कि उसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया और उसने अलाउड किया. एक उनका भी, मैं उनकी महानता एक अलग रीति से बता रहा हूं कि अब वो काम करेगा, नहीं तो हर व्यक्ति का अपना अहम होता है, मैं भी तो कुछ हूं. यहां कृष्णमूर्ति का अहंकार, मतलब उसने कहा कि मैं आई एम कृष्णमूर्ति, उसका स्पीच है पूरा पढ़ो 1925, एंड आई एम नॉट अ वर्ल्ड टीचर. उसने कहा मैं वर्ल्ड टीचर नहीं हूं, वो तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, वो बाद में आज तक कभी किया नहीं गया वो. तो दैट वाज द फर्स्ट एवर एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इन द थियोसॉफिकल सोसाइटी. तो हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कि हमने जो भी जन्म लिए है वो हमको याद है, याद हम कर सकते हैं और करने हैं ये सारे जन्म, कि जहां पर प्यूरिटी मेरा नेचर है, ये इस तरह के जो संबंध मैंने बना रखे हैं एक दूसरे से, घृणा के, नफरत के, काम के, क्रोध के, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये एबनॉर्मल है, ये परवर्शन है, विकृति है. ये संकल्प अपने मन में लाना, ये जो है ना तभी उससे वैराग आएगा, ये जो है ये विकृति है, दिस इज एबनॉर्मल. जिस रोमांटिक रिलेशन को लोग कहते हैं नॉर्मल है, दिस रोमांस एंड बोमांस, बोमांस पता है ना, मेल फीमेल का रोमांस, मेल मेल का बोमांस या फीमेल फीमेल का, वो एबनॉर्मल है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के ऐसे संबंध नहीं थे, पवित्रता के संबंध थे. दैट इज माई नेचर. ओम शांति.